अब मैं अपनी मोहतरम उस्तादा से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैजियाब करें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि श्राहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान है, डू आई रियली लव प्रॉफिट? क्या मैं वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। किताबे हस्ती के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम ना होता, तो नक्शे हस्ती उभर ना सकता, वजूदे लोहो कलम ना होता, वो दानाए सुबुल खत्मु रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्को मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। मेरे हाथों से खुशबू जाती ही नहीं, मेरे हाथों से खुशबू जाती ही नहीं, मैंने नामे मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। जिंदगियां बीत गईं और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी ख़त्म ना हुआ, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगु बंदा नवाजी खंदा पेशानी, कहाँ दिल नवाज तुझसा कहाँ चारा साज तुझसा, कहाँ दिल नवाज तुझसा कहाँ चारा साज तुझसा। तो आज मैं आप सब बहनों को इस सीरत कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहती हूँ और आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आज आपके आने का फैसला आपकी जिंदगी के बेहतरीन फैसलों में से एक है। आज चंद घंटे, चंद लम्हात, चंद सातें मैंने और आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की हैं, और मेरे और आपके ऊपर कलमा पढ़ने की वजह से बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तो आज जो मेरा और आपका उन्वान है, क्या मैं वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ? तो पहली बात तो ये है कि मैं से मुराद क्या है, मैं कौन हूँ? तो मेरी प्यारी बहनों, मैं से मुराद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो ईमान लाने वाले यहाँ पे मुराद हैं, वो जिन्होंने कलमा पढ़ा है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कलमा मुकम्मल नहीं होता जब अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम न लिया जाए। जब अल्लाह की अतात की बात हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी जरूरी हो जाए। तो नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। तो मुझे बंदगी करनी है, मुझे इबादत करना है, मुझे झुकना है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे अपने मामलात को संवारना है, मुझे अपने इखलाक को दुरुस्त करना है। तो कैसे करना है? जैसे मेरे और आपके रब ने हुक्म दिया है, उदखुलू फिस्सिल्मे काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो दाखिल कैसे हूं, कैसे बंदगी करूं, मेरा इखलाक कैसा हो, मैं कब मुस्कुराऊं, गम की खबर सुनूं तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं शिकवे शिकायत करूं या मैं सब्र का पहाड़ बन जाऊं? तो ये बात मुझे पता चलेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, उनकी सीरत से। क्यों? मैंने कलमे में क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं क्या दुआ पढ़ती हूँ सुबह शाम के अस्कार में है, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। मैं इस बात पे राजी हो गई, मैं खुश हो गई, मैंने दिल और दिमाग की गहराइयों के साथ इस बात को कबूल कर लिया कि अल्लाह तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा हाकिम है, तू जो कहेगा मैं वही कहूंगी, तू जो कहेगा मैं वही करूंगी, तू जहां मुझे करने का जो हुक्म देगा वो मैं करूंगी और जिससे रोकेगा मैं रुक जाऊंगी। तो रदीतु बिल्लाहि रब्बा, और अल्लाह तू गवाह है ना, हम इस बात पे राजी हैं कि तू हमारा रब है। और इस ये बात कहने का मतलब क्या है कि तेरे हमारी जिंदगी के फैसले जो हैं, तूने मेरी जिंदगी में जो कुछ भी रखा है मैं उस पर बहुत खुश हूं। तू खालिक है, तू मालिक है, तू 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, तो तू मुझे जिस हाल में रखे और जो तू मुझसे चाहे और जब जब चाहे, मैं तो अपनी जिंदगी तेरे नाम पर निछावर कर दूं, मैं तो अपनी सांसें तेरे नाम कर दूं, मेरे खून का एक एक कतरा तेरी बंदगी करता रहे, मैं तो तौहीद और आखिरत की लोरियां गाती रहूं। क्यों? रदीतु बिल्लाहि रब्बा, सुबह शाम के अज़कार में मैं सुबह शाम पढ़ती हूँ और मैं नमाज में कहती हूँ इय्याका नाबुदू इय्याका नाबुदू इय्याका नाबुदू। फिर दूसरी बात, उस दुआ में हम क्या कहते हैं, वबिल इस्लाम दीना, कि दीन है मेरा वे ऑफ लिविंग, मेरी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, दीन इस्लाम है। तो दीन जो है वे ऑफ लिविंग को कहते हैं, यानी जिंदगी गुजारने के जो उसूलो जवाबित हैं उसको दीन कहते हैं। दीन और दुनिया अलग नहीं है, दुनिया जगह है और दीन रूल्स रेगुलेशन का एक मजमुआ है, उसकी कलेक्शन है जो हमें कुरान और सुन्नत से पता चलती है। तो इस दुनिया में रहते हुए, चलते फिरते हुए, बाजारों में, मॉलों में, शादी ब्याह की तकरीबात में, खुशी गम के जो भी मौके हैं उन पर रहते हुए दीन इस्लाम को नाफिज करना है, उसको उस पे अमल करना है। और कहाँ नाफिज करना है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इस चंद फुट के इंसान पे नाफिज करना है। जिस दिन इस पे नाफिज करने में कामयाब हो गए तो समझ लें सारी खुदाई मेरी है, समझ लें सारी दुनिया मेरी है, समझ लें कैसरो किसरा की बादशाहत मेरे कदमों के नीचे है, क्योंकि मैंने अपने आप को जो है वो मफ्तू कर लिया, मैंने अपने आप को जेर कर लिया। आज के मुसलमान का सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं और आप दूसरों को बताना चाहते हैं लेकिन अपने आप को बताने में जो है वो नाकाम नजर आते हैं। कुरान को और दीन को अपने ऊपर नाफिज करने में जो है वो हम हार गए। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो अहले ईमान की बात हो रही है, कुरान वालों की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं। तो क्या मैं वाकई अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हूँ? रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना वबे मोहम्मद नबिया, और मोहम्मद मेरे नबी हैं और मोहम्मद मैं उनके कुर्बान जाऊं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे और आपके लिए रोल मॉडल हैं। वो कल जिसका ऐलान किया था कोहे सफा पे आका ने, कल जिसका ऐलान किया था कोहे सफा पे आका ने, आज भी वो सच्चाई लोगों सबसे बड़ी सच्चाई है। तो मैं कौन हूं? मैंने और आपने फातिमा नाम रखा, मैंने और आपने मुस्लिमा नाम रख लिया, अमतुल हफीज नाम रख लिया, मैंने और आपने मरियम नाम रखा, खदीजा नाम रखा, आमिना नाम रखा। तो क्या नाम रखने से मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू की फहरिस्त में दाखिल हो जाती हूँ? मैंने और आपने मोहम्मद नाम रखे, अहमद, अबू बकर, सिद्दीक और सहाबा और सहाबियात के और अम्बिया के नाम रखे। लेकिन दीन इस्लाम किरदार मांगता है, चश्मे फलक वो नज़ारे मांगती है जो मक्का की गलियों में पेश हुए थे, चश्मे फलक रश करती है आज भी उन नज़ारों पर जो के अंसार ने पेश किए थे कि जब वो ईमान लाए थे उनका ईमान कैसा था कि कुरान की आयतें नाजिल होती थी तो सरापाए अमल बन जाते थे और वो अमल करते थे तो उनके अमलों की गवाही के लिए कुरान की आयतें नाजिल हो जाती थी। युसिरून अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा, उम्मे सुलेम और हजरत तलहा अंसारी रदी अल्लाह अन्हो जो है भूखे रहते हैं, रात भर प्यासे रहते हैं और अपना खाना जो है मस्जिद नबी से जो मेहमान हैं उनको खिलाते हैं, इसार करते हैं, वही नाजिल हो जाती है। आज कुरान की आयतें ईमान लाने वालों का इंतजार कर रही हैं ओ कलमा पढ़ने वालों, ओ ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में नारे लगाने वालों, झंडियां लगाने वालों, देगे तकसीम करने वालों, गलियों को सजा देने वालों, तुम कहां रह गए ऐ ईमान लाने वालों? तो आइए मैं और आप अपना जायजा लें कि मैं कौन हूं, क्या मैं मोमिना हूं, क्या मैं कलमा पढ़ने का हक अदा कर रही हूं? कुरान की आयतें मेरा और आपका इंतजार कर रही हैं, मैं और आप भी उसको पढ़ते हैं तो गुजर जाते हैं, वो जख्मी जख्मी हैं, वो मुर्दा हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, कुरान फरियाद करता है कि मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। वबिल वालिदैनी एहसाना, लोग पढ़ते हैं और गुजर जाते हैं, वालदैन तन्हा हैं, उदास हैं, वो रोते हैं। मैं और आप तो इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि शोहर के वालदैन की अतात कुरान में कहीं है कि नहीं, करनी है कि नहीं, अपने वालदैन की नहीं करते कि वो बड़े भाई को करनी थी, वो छोटी बहन को करनी थी, वो साथ वाली को करनी थी, वो दीन जो कुत्तों के आदाब देता है, वो दीन जिसने चरिंद परिंद के आदाब सिखाए हैं, तो क्या उसने मेरे वालदैन के और मेरे शोहर के वालदैन के हमें आदाब नहीं बताए? वो दीन इस्लाम बहुत खूबसूरत है, तो वो आदाब देता है, वो इखलाक देता है, वो अमल की पुकार देता है। वबिल वालिदैनी एहसाना, वो कहते हैं वकूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों से हुस्ने सलूक करो, भली बात कहो। हम तो आपस में एक दूसरे की जड़े काटते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं कौन हूं? मेरा नाम कुछ भी है, आप कौन हैं? आपका नाम कुछ भी है, असल चीज ये है सूरतें बहुत खूबसूरत हैं, गाजे लगाए हैं, मेकअप किया है और ब्रीजा के सूट पहने हैं, ब्रीजा के सूट पहने हमने, नेम ब्रांड का फोबिया है, बेस्ट से बेस्ट चीज आईफोन पास होना चाहिए जो अभी फ्रेश फोन आ चुका है, और गाड़ी कौन सी होनी चाहिए जो न्यू और अच्छी मॉडल की गाड़ी होनी चाहिए। तो मैंने और आपने अपनी पहचान दौलत, हुसन, डिग्री, कुर्सी उसको बना रखा है, लेकिन मेरी और आपकी पहचान क्या है कि दिल के अंदर क्या है, नीयत क्या है, अमल कैसे हैं? जिस कुरान पर, जिस रसूल पर ईमान लाने का दावा किया था, जिसकी बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसके नाम की माला जपते हैं, जिसकी तकरीरें करते हैं, जिसकी सीढ़ियां भरते हैं, जिसकी क्लासेस करते हैं और तकमीले कुरान की तकरीब करते हैं, जब अमल की बात होती है तो मैं और आप कहां मर जाते हैं? फिर मैं और आप कहां रह जाते हैं? अल्लाह जरूर पूछेगा कि मेरे दीन का मजाक उड़ाया जाता था, मेरी आयात जख्मी जख्मी थी, मेरे रसूल जो है मेरे रसूल के खाके बनाए जाते थे, मेरे रसूल का, मेरे रसूल की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता था। कोई कहता है कि अब ये इस चीज की जरूरत नहीं है, कोई कहता है अब हदीस की जरूरत नहीं है, कोई कहता है कि अब आप तो पुराने जमाने की बात करते हैं, आप अगर हिजाब लेते हैं और अगर आप जो है वो अपने आप को कवर करते हैं तो दोष छोड़ देते हैं, लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। तो ऐ ईमान लाने वालों, तुम कहां मर गए? वो ईमान कहां हो गया? तुम कहां रह गए? तो आज सीरत रसूल का जलसा है, आज सीरत कॉन्फ्रेंस है, आज मुहासबे की घड़ी है, जब हशर में पूछा जाएगा था पास खजाना कुव्वत का, वो किस मकसद पे सरफ किया? उस वक्त कहोगी क्या बोलो, उस वक्त कहोगी क्या बोलो, हर उजर को कांटे पर तोलो। कहीं फलां नाराज तो नहीं हो जाएगा, फलां दोस्तों का हल्का छूट तो नहीं जाएगा, फलां मेरी फिर इयादत नहीं करेगा, फलां मुझे फिर खाना नहीं बना के देगा, इसलिए कि मैंने सच बात कर दी, इसलिए कि मैंने हक का साथ दे दिया, इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा कर दिया। तो लोग जो है वो फंड देना रोक देंगे, लोग जगह देना छोड़ देंगे, सब चीजें छूट जाए, लेकिन वो खुदाई, खुदा से ताल्लुक नहीं छूटना चाहे, दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत जो है उसको जिंदा करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक हक की तलवार बन जाए, तलवार किस लिहाज से? अल्लाह के दीन को फैलाने में, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में। तो पहला सवाल यह है, आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछती हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैंने अपनी जिंदगी कहां गुजार दी, मैं कहां सोती रही, मैं गीबत करती रहती हूं, मैं चुगली करती रहती हूं, अगर कुफर के काफिर लोग, अगर गैर मुस्लिम जो है वो दीन के रास्ते की रकावट बने तो समझ आती है बात की कि होता आया है, लेकिन क्या अपने ही लोग अपने ही अपने की जड़ें काटेंगे? क्या एक मस्जिद दूसरे मस्जिद की मुखालफत करेगी? क्या दीनदार लोग जो हैं वो एक दूसरे की रौनक को खत्म करेंगे? क्या वो नेकी के काम में तावन नहीं करेंगे? व तावानु अलल बिर्र व तक्वा वला तावानु अलल इस्म वल उदवान। तो मुझे और आपको वो बहता हुआ चश्माए शीरी बन जाना है जो पहाड़ों से रिम झिम करके बहता है, हर एक को सैराब करता चला जाता है। तो आपस में इत्तहाद की फिजा, तो पहली चीज मैं कौन हूं, दूसरी चीज मोहब्बत, मोहब्बत है क्या, क्योंकि क्या मैं वाकई रसूल से मोहब्बत करती हूं तो अपना मुहासबा। नंबर टू, मोहब्बत क्या है? तो मोहब्बत जो है ये अकल से ऊंची चीज है, ये एक जज्बा है जो सीनों में मौजन होता है, ये एक अजीब सा एहसास है जो दिल की सरजमीन में एक तूफान भरपा कर देता है, ये एक मर्ज है जो ला इलाज है। ये इंसान को जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसको रफ्फत के इंतहाई दर्जों पर पहुंचा देता है। ये ऐसा ठाठे मारता हुआ समंदर है जो पत्थरों में से रास्ता बनाना जानता है, ये रुकता नहीं है, ये ठहरता नहीं है, ये जमता नहीं है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। और मोहब्बत क्या है? सरे तस्लीम खम कर देना। मोहब्बत क्या है? फिर महबूब की पसंद को अपनी पसंद बना लेना। मोहब्बत क्या है? कि जब से ऐलान मोहब्बत का किया है मैंने, जब से ऐलान मोहब्बत का किया है मैंने, मुझसे हर एक मोहब्बत की निशानी मांगे। तो मोहब्बत इंसान से हो सकती है, कोई आशिक और महबूब, मोहब्बत वालदैन से हो सकती है, वालदैन की बच्चों से हो सकती है, मोहब्बत जो है वो एक जानवर को, जानवर जो है उसको अपने बच्चों से हो सकती है। तो मोहब्बत मुख्तलिफ तरीकों से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो हमें मोहब्बत करनी है वो किस से करनी है। आज जो मेरा टॉपिक है कि क्या मैं वाकई रसूल से मोहब्बत करती हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहब्बत किस से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं, कद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, के मैंने मोमिनीन पर एहसान किया। मन जो है एहसान के लिए आता है। कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास तौर पर मन का लफ्ज इस्तेमाल किया। कद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मुझ पर और आप पर एहसान किया। कैसे? इस बासा फीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम, इन्हीं में से एक रसूल बनाकर भेजा, इंसानों में से। मैं और आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था, वो नूर थे। अल्लाह ताला कहते हैं मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से एक रसूल बनाकर भेजा। वो करते क्या थे? यतलु अलैहिम आयातेही, कुरान की आयात की तिलावत करते थे। यतलु अलैहिम आयातेही व युज़क्कीहिम, तो इनकी आयात की तिलावत करते थे, तज़किया करते थे। व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और उनको किताब की तालीम देते थे और हिकमत सिखाते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल जब बनाकर भेजा तो उनकी रिसालत के चार बड़े मकसद थे, और क्या थे? कि वो कुरान की आयात की तिलावत करते थे। दूसरी चीज क्या थी? कि वो तज़किया करते थे। तीसरी चीज क्या थी? कि वो तालीम देते थे। वह युअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब की तालीम, और आखिरी बात हिकमत। तो कुरान मजीद और अहदीस का मजमुआ, ये दोनों इस चीज में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये मिशन कैसे अदा किया, और कुरान मजीद में अल्लाह ने आपकी क्या हैसियत बताई है, आपका मकाम क्या है अल्लाह की नजरों में। मैं अभी एक महफिल में गई और बहुत ही अच्छी वो बहन, और मैं उनसे बड़ी मुतासिर। आजकल मैंने ये जो दिन है, मैंने खास तौर पे के कहीं भी कोई प्रोग्राम रखना चाहे या करना चाहे तो मैंने अल्लाह के लिए ये दिन वक्त किए हुए हैं कि मैं अल्लाह का जिक्र करूं, अल्लाह की बातें करूं, बातें तेरी कहते कहते ये दिन भी गुजार दूंगी। तो रात है या दिन है, तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उसमें एक प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि यानी हम बैठकर हम भी यानी रबीउल अव्वल का महीना है तो हम कुछ करना चाहते हैं, हम में से हर शख्स करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सुनी सुनाई बातें, खानदान से चली आ रही हैं, रस्म और रवाज हम वो करें या जो हमें कुरान और हदीस ने बताई हैं। तो अब यहां पे देखें कि आयत नंबर 31 है सूरत आल इमरान की, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या कहिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ईमान वालों को कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो, फत्तबिउनी, मेरा इत्तबा करो, मेरे फुट प्रिंट पे चलो, यानी मेरे पांव के, मेरे पीछे पीछे चलो। जैसे जब इंसान चलता है ना कोई, तो उसके पांव के निशान बन जाते हैं। आप जब ये बर्फ बहुत गिरती है और आप जब चलती हैं तो आपके कदमों के निशान होते हैं, जो सबसे पहले चलता है, फिर दूसरा उसके कदमों के निशानों पे अगर कदम रखता है, तो किसी के फुट प्रिंट को फॉलो करना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ईमान लाने वालों को कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो, यानी रसूल की पैरवी करो। दूसरी चीज क्या है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, फिर अल्लाह क्या करेगा, युहबिबकुमुल्लाह, कि वो तुमसे मोहब्बत करेगा, वो तुमसे प्यार करेगा, और क्या करेगा, वह यग़फिर लकुम, और वो बख्श देगा, और वो पर्दे डाल देगा, वो गुनाह जो छुप छुप कर किए हैं, वो जो छोटे हैं, वो जो बड़े हैं, वो जो खिड़कियां बंद करके किए थे, वो जो दरवाजे बंद करके किए थे, वो जो गीबत चुगली की थी, कोई सुन तो नहीं रहा, किसी को पता नहीं चला, वो जो तलाकें किसी की दिलवा दी थी, वो जो दो लोगों में झगड़ा करवा दिया था, जो हमारे बच्चे का कसूर था, थप्पड़ किसी और के बच्चे को मार दिया था, वो जो हमसाए की जो है, हमसाए की जो राज की बात थी मैंने दूसरों को बता दी थी, वो जो मैं हसद करती हूँ, वो जो मैं चुगली करती हूँ, वो जो मैं दिलों के अंदर कीना और कदूरत, मेरा दिल भरा हुआ है, ईमान की जगह ही नहीं बचती, तो मेरा और आपका रब क्या करेगा, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, सारे गुनाह माफ कर देगा, और क्यों ना माफ करे, वल्लाहु ग़फूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। उम्मीद है, एक होप है, अल्लाह ताला कहते हैं ऐ वो लोगो जो दिन की रोशनी में गुनाह करते हो, ऐ वो लोगो जो रात की तारीकी में गुनाह करते हो, नाफरमानियां करते हो, मेरी तरफ लौट आओ कि मैं तुम्हें बख्श दूं। अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला है। मेरी और आपकी जिंदगी के दिन जो भी गुजरे, जैसे भी गुजरे, और आइए अपने गुनाहों को, जो ये जो दरख्तों पर पत्ते, अभी फाल सीजन गुजरा है ना, कैसे जर्द पत्ते गिरते थे, नीचे कैसे भर जाते थे, आइए अपने गुनाहों को अलविदा कह दे उन पत्तों की तरह, जर्द पत्तों की तरह, आइए एक नई जिंदगी की इब्तदा करें, और वो क्या है कि हम अल्लाह के रसूल का इत्तबा करें तो अल्लाह मेरे और आपके गुनाह माफ कर देगा। तो ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, 70 माओ से बढ़कर प्यार करता है। दूसरी बात क्या कही, सूरत आल इमरान आयत 132, वातीउल्लाह वर रसूल, और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, शायद के तुम पर रहम किया जाए, हो सकता है कि अल्लाह तुम पे भी मेहरबान हो जाए। तो अल्लाह की अताअत के साथ रसूल की अताअत लाजिम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना जरूरी है। हम में से जो ये लोग कहते हैं ना खाली कुरान से ही समझ लेंगे, अब हदीस की जरूरत नहीं है, अल्लाह जब अपना जिक्र करता है तो साथ ही रसूल का जिक्र करता है। फिर तीसरी आयत है सूरत निसा की आयत 80 है, मैं युति रसूल फकद अतल्लाह, बहुत अहम आयत है, जरा गौर करें इस पर, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं युति रसूला, जिसने रसूल की अताअत की, रसूल को फॉलो किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माना, उनकी पैरवी की, तो दर हकीकत उसने क्या किया, फकद अतल्लाह, तो उसने अल्लाह की अताअत कर ली। रसूल की अताअत अल्लाह की अताअत है, कितनी बड़ी बात है। तो वही की दो किस्में हैं, एक मतलू और एक गैर मतलू, एक जो हमें कुरान हम पढ़ते हैं, और एक ये कि वही प्यारे रसूल पर भी आती थी, जो आपकी अहदीस अल्लाह ताला आपको साथ साथ रहनुमाई करते चले जाते थे। तो फिर क्या फरमाया, वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, और अगर इसमें से कोई भी रसूल की अताअत नहीं करता तो आप इन पर कोई निगहबान नहीं है, आप इन पर कोई पुलिस मैन नहीं है, आपको फिर इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत, ये है मेरे और आपके बिलविड प्रॉफिट, कि उनकी अताअत को अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरी अताअत है। अच्छा, हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के कुछ मकासिद होते हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कभी इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो कहता है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, तो इसलिए मोहब्बत की जाती है। कभी इसलिए मोहब्बत की जाती है कि यानी जैसे दौलत से मोहब्बत की जाती है कि रिच बन जाऊं मैं, अमीर बन जाऊं, और दौलत में जो है बहुत सी चीजें आ जाती हैं जिसमें जेवर भी आता है, कपड़ा भी आता है, घर आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, और मैं और आप इतनी उससे मोहब्बत करते हैं कि उसके लिए आंसू बहाते हैं। मेरा अपना घर कब होगा, मैं कब तक किराए के घर में रहूंगी, एक बेडरूम के घर में कब तक, आखिर कब तक, कहां मेरी किस्मत फूट गई, कहां मेरे वालदैन ने मेरी शादी कर दी। तो मेरा और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं किससे मोहब्बत करती हूँ, एक एक घर से जो मेरा अपना होना चाहिए और वो किराए का नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मैं आंसू बहाती हूँ, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और बीबी आसिया किसके लिए आंसू बहाती थी, रब इब्ने ली इंदा का बैतन फिल जन्ना, के जन्नत में अपने पास मेरे लिए एक महल बनाते। उसका बीबी आसिया का फिरौन के महल में दिल नहीं लग रहा था, जहां हीरे जोहरात जड़े हुए थे, क्योंकि वो अकफर काफिरीन था, वो अल्लाह का नाफरमान था, वो तागूत था, वो बागी था, वो गलत काम करता था। तो बीबी आसिया जो थी उसकी जौजियत में तो थी, लेकिन ये के अपने ईमान का उन्होंने सौदा नहीं किया। तो कोई भी औरत कितनी ही मजलूम क्यों ना हो, कितनी ही बेबस क्यों ना हो, कितनी ही मोहताज क्यों ना हो, तो उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए बीबी आसिया की तरह। तो बाज़ लोग दौलत से मोहब्बत करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कहीं मैं दौलत से मोहब्बत तो नहीं कर रही। फिर इसके बाद ताकत से मोहब्बत करना, कुर्सी बड़ी कीमती चीज है, जब तक मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी, मुझे किसी जगह की इंचार्ज नहीं बनाएंगे, मेरे सर पर ताज नहीं रखेंगे, मेरे आगे पीछे नहीं जाएंगे, तो उस वक्त तक जो है मैं खुश नहीं होती। फिर इसके बाद है कामयाबी, सक्सेस। कामयाबी और सक्सेस के बाद लोग राइट आर रॉन्ग, जो भी उसको मींस मिलते हैं, रिसोर्सेज, वो यूज करता है और कहते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, दुनिया में कामयाब होना है, तो उसकी जिंदगी का मकसद कामयाबी होता है और वो उसे मोहब्बत करता है, और उसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, ना हलाल देखता है, ना हराम देखता है, ना जायज देखता है, ना नजायज देखता है, ना ये देखता है ये बेवा की चीज है, ना देखता है यतीम के हैं, ना देखता है बहन के हैं, ना देखता है माँ के, बस उसका मकसद क्या है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं हूं या मेरे बच्चे हैं। तो मुख्तलिफ मकासिद है मोहब्बत के। तो मैंने और आपने क्या कहा कि मैं तो रसूल से मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हम जायजा लें। मैं एक बुक पढ़ रही थी एरिक फोरम की, ये द आर्ट ऑफ लव, बड़ी अच्छी बुक है। इसमें वो बताते हैं कि मोहब्बत के कुछ दर्जात हैं, कुछ स्टेप्स हैं। कौन सी मोहब्बत के, जो प्रोडक्टिव मोहब्बत है, प्रोडक्टिव लव जो है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। और ये मैंने इसलिए यहाँ आपके सामने भी रखे हैं कि मैं और आप जायजा लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं और आप जो मोहब्बत करते हैं, क्या मैं और आप इन स्टेप्स पे पूरा उतरते हैं, हम किस जगह पे खड़े हैं। जैसे ये एक सीढ़ी है, ये एक लैडर है, तो पहला स्टेप क्या है कि महबूब के बारे में जानना। आमतौर पे जैसे एक बच्ची जो थी, वो मैं जब अमेरिका में थी तो उसकी वालदैन ने उसकी किसी डॉक्टर से शादी की और मैं भी उस शादी में थी, तो उसके बाद मतलब वो बच्ची जो थी वो किसी और को पसंद करती थी और वो नहीं चाहती थी वहां पे रहना जाना। तो उसके जब शादी के फौरन बाद जब आई तो उसके माँ बाप बहुत परेशान थे, मेरे पास आई बच्ची से काउंसलिंग वगैरह बातचीत, तो मैंने उसे कुछ सवाल पूछे तो कहने लगी कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ ना, हकीकत में मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो मैंने कहा उसमें क्या ऐसी चीज है, क्योंकि ये तो तुम्हारे वालदैन ने इंतखाब किया है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, यहाँ का सिटीजन है, दूसरा लड़का उसके पास वहां का स्टेटस नहीं था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और मुआशी लिहाज से भी वीक था, और मतलब जो बातें मैंने उनके पेरेंट्स और उससे सुनी थी। कहने लगी कि वो ना केयरिंग बहुत है, वो लविंग बहुत है, हेयर स्टाइल मुझे जिस लड़के से मेरी शादी है उसका हेयर स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, और बाज लोग कहते हैं कि मुझे उसका एक्सेंट पसंद नहीं है। तो इस तरह उसने कई चीजें रखी और यहां तक कि फिर तलाक हो गई। तो और वो जिससे वो मोहब्बत करती थी एक एक उसके बारे में चीज बता रही थी कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। तो महबूब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कब सोता है, वो कब सोती है, वो कब उठते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, वो किस घर में रहती है, वो कैसे मुस्कुराती है, लेडी डियाना की तरह मुस्कुराती है या उससे हटकर मुस्कुराती है। तो हमें एक एक उसकी अदा, एक एक एटिकेट, एक एक चीज जो है अपने महबूब के बारे में, जिसको भी इंसान पसंद करता है, हमें पता होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, तो पहली स्टेज है नॉलेज की। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीरत रसूल का मताला किया है, हाथ खड़ा करें। सीरत रसूल पर कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितना अंदाजा है पूरा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एटलीस्ट जब आप पैगंबर बने 40 साल के हुए, उससे लेकर अपनी डेथ तक आपकी जिंदगी के अंदाज क्या थे, आपके तौर तरीके क्या थे, मक्का की गलियों में क्या करते थे, मक्का वालों ने क्या किया, आपने क्या किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी जो है वो मोहब्बत है। तो यानी पहली चीज ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी और मिशन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। मैं और आप अपना जायजा ले सकते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी, आपका इखलाक, आपका किरदार कितना पता है। आप अपने अपने आप को खुद ही नंबर देते जाए, मैं भी अपने आप को दे रही हूं, ठीक है। दूसरी चीज जैसे क्या चीज है कि फिर अंडरस्टैंडिंग, समझना, ताल्लुक बनाने की कोशिश करना, एहसास और जज्बात। जैसे मैंने बताया कि यूथ से मेरी काफी मीटिंग रहती है, ख्वातीन से भी रहती है, तो शादी वगैरह के मौके पे जब बच्चे इश्क करते हैं और जब वो दिल में कोई चीज आ जाती है तो वालदैन के समझाने से भी समझती नहीं, तो कई दफा मेरे से भी बाज लोगों की मुलाकात होती है और उनसे जब सवाल पूछते हैं ना कि देखो तुम्हारे और उसके माहौल में फर्क है, देखो उनके हालात और तुम्हारे हालात में भी बड़ा फर्क है, तुम सोच रहे हो कि कल को फिर तुम निभा कर सकोगे, तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं जो हूं ना मैं अंडरस्टैंड कर रही हूं और मैं जो है मैं हैंडल कर लूंगी, मैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लूंगी। तो ऐसे ही एक बच्ची ने पिछले दिनों यही शादी की और उसके बाद जो है वो उसकी वालदा की कॉल आई और फिर पुलिस भी बीच में इन्वॉल्व हुई, फिर वो मेरे पास भी आके रही, फिर मेरी उससे बातचीत भी हुई। तो मैंने कहा जब शुरू में ये सारी बातें हो गई थी तो अब फिर तुमने क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग पैदा की, तुम्हें तो पहले ही पता था कि लड़के के ये हालात है, तुम्हें पहले ही पता था उसकी डिफरेंट कल्चर है, वो डिफरेंट कंट्री से ताल्लुक रखता है, उसकी डिफरेंट जबान है, उसके हालात अच्छे नहीं है, फिर तुमने ऐसा जो है वो क्यों किया। तो उसमें उसने क्या बात कही कि मैंने सोचा तो था लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं कर पा रही, मैं बहुत गुस्सा मुझे आ जाता है, मैं चीजों को तोड़ने लगती हूँ और फिर मैं पुलिस को कॉल कर लेती हूँ और मैं अब आपके साथ कुछ दिन रही हूँ तो अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो दूसरी स्टेज जो होती है अंडरस्टैंडिंग की है। तो मेरी और आपकी, यानी मैंने और आपने अपनी सोच को, अपनी बातों को और अपने आप को अल्लाह के नबी की सुन्नत के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग पैदा की है, जो इल्म हासिल किया उसके मैं कितनी करीब हुई, उससे कितना ताल्लुक बनाया कि मेरा इखलाक कैसा है, प्यारे रसूल का तो ऐसा नहीं था, मेरा तो इतना टेम्पर ऊंचा हो जाता है, मैं मुझे तो अपना गुस्सा जो है इस पे काबू करना है, मैं जो है बच्चों के साथ क्या कर रही हूँ, प्यारे रसूल का अंदाज क्या था। जैसे एक माँ कहती है मैंने अपने बच्चों को कभी प्यार नहीं किया, या बाज़ लोग कहते हैं कि हम बहुत सख्ती करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी तो ऐसा नहीं करते थे। तो इसका मतलब है सही इल्म नहीं है और उसके मुताबिक अमल नहीं है। तीसरी चीज है अकीदतमंदी, अकीदतमंदी यानी आइडियलाइजेशन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो बनाना, क्योंकि आम तौर पे हम किसी ना किसी फिल्मी एक्टर को, किसी ना किसी खिलाड़ी को, किसी ना किसी दुनियादार को अपना हीरो बना लेते हैं या हीरोइन बना लेते हैं। एक औरत बच्ची की शादी हुई, जब वो ब्याह कर आई तो वो उसके घर में आती लड़ाई हुई, तो मैंने कहा कि क्या बात है, मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगी कि मैंने फिल्म के अंदर देखा था कि कमरे की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, तो मेरे जो मूवी के अंदर सेटिंग थी ना मेरे घर वालों ने वैसी सेटिंग नहीं की और घर वालों ने किसी को बुला के उसके कमरे को डेकोरेट करवाया था। तो अब आप देखें कि उसने अपनी का जो आइडियलाइजेशन थी वो एक मूवी थी जो हकीकत की दुनिया से बहुत हटकर है। और एक बच्ची जो थी वो शादी के बाद रोने लगी, कहने मेरी क्लासेस में आती थी तो कहने लगी कि मुझे नहीं मजा आ रहा शादी में और बहुत मुश्किल। तो मैंने कहा खैरियत, तो कहने लगी मैंने सोचा था मैं उठूंगी तो मेरा शौहर मुझे गुलाब का फूल पेश करेगा, तो मेरी जिंदगी जो है वो इससे हटकर है। तो रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ इससे बहुत हटकर है। तो हम जो शीश माल में रहते हैं, जो फिल्मों के अंदर, जो मूवीज के अंदर, दूसरी तखयलाती जिंदगी में रहते हैं, तो जो हम आइडियल, आजकल जो यूथ की शादियां नाकाम हो रही हैं, मंगनियां टूट रही हैं, मसाइल हो रहे हैं, इधर बात तय होती है उधर झगड़ा हो जाता है और बात खत्म हो जाती है, उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि हमने जो है वो मैन मेड हम इंसान चाहते हैं, इंसान को अल्लाह ने बनाया है। एक औरत कहने लगी कि मेरी बेटी के लिए उसके शौहर ने कहा कि उसके नाक के अंदर बाल नजर आते हैं, नाक के अंदर बाल नजर आते हैं। सच्ची बात है, मैं तो इतनी उदास हो गई कि देखो उस बच्ची का कितना मसला है, और ये कि तुम्हारे चेहरे पे बाल क्यों हैं और तुम्हारे बाल स्ट्रेट क्यों नहीं हैं, एक को कहा कि तुम्हारे बाल घुंघरियाले क्यों हैं, एक को कहा तुम्हारा कद छोटा क्यों है, एक ने कहा तुम मोटी बहुत लगती हो, और इस तरह की बहुत सी बातें, और जिसकी वजह से तलाके जो है वो हो रही हैं। तो अब ये कि क्या मैंने और आपने प्यारे रसूल के सरापे का जायजा लिया, आपका हुलिया कैसा था, आपका इखलाक कैसा था, आपके आपके तौर अतवार कैसे थे, आप कैसे रहते थे, कैसे चलते थे, कैसे फिरते थे, कैसे लेते थे, कैसे देते थे, तो उनसे मुशाबहत, ये तीसरा स्टेप है कि मुझे और आपको प्यारे रसूल को जो है वो आइडियलाइज करना था। और हमने किसको किया, दुनियादार लोगों को किया। उनके पास मैंने देखा कि गोल तो है पर वाइट है, मेरा गोल जो है वो वाइट नहीं है, तो अब मैं कहती हूँ कि कब मुझे व्हाइट गोल्ड अपने शोहर को कहती हूँ लेके दे। मेरे पास सूट तो है पर ब्रीजा का नहीं है, नहीं ब्रीजा का तो है पर इसमें मोती सितारे नहीं लगे, क्योंकि ब्रीजा में मोती सितारे आ गए, ठीक है ना। तो मैंने दुनिया को आइडियलाइज कर लिया, मैं कभी खुश नहीं रह सकती क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है। तो मुझे अल्लाह के रसूल को आइडियलाइज करना है कि एक दफा हजरत उमर ने देखा रदी अल्लाह उन्हों ने, तो क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे लेटे हुए थे, पास चंद खजूरें थी, पानी का मिशकीजा था, और हजरत उमर रदी अल्लाह ने देख कर रोने लगे कि कैसरो किसरा के बादशाह दुनिया के मजे लूटे और दो जहां का बादशाह इस हाल में। तो हजरत प्यारे रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमर, क्या तुम इस पे राजी नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखरत हो। तो ये थे मेरे और आपके बिलवड प्रॉफिट। तो मेरा और आपका हीरो कौन है, दिल की धड़कन कौन है, किसको जो है वो कॉपी करते हैं, किसको नमूना बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बेहतरीन अगर किसी चीज को हमें जो है फॉलो करना है तो प्यारे रसूल हैं। आखिरी स्टेज जो सबसे हाई लेवल है, जो कमाल मोहब्बत है, वो यह है सेक्रीफाइस करना। तो मैं और आप प्यारे रसूल के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना जिसमें मैं और आप बैठे हुए हैं, तो जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे थे तो मैंने कुछ बहनें जो यहाँ कॉन्फ्रेंस रखना चाह रही थी, मैंने उनसे कहा कि लग रहा है कि अब मुश्किल होगा हॉल की बुकिंग, फिर पैसे, फिर इंतजाम। उन्होंने कहा नहीं आप कॉन्फ्रेंस तो करें, हम इंतजाम कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमने हॉल बुक करवा दिया। मैंने कहा कि चलो सादगी से भी कर लेते अगर आपने हॉल बुक करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं खाना भी देना है। मैंने कहा छोड़ो क्या मतलब अल्लाह के नबी की बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने खाने वालों को जब ऑर्डर करना था मैंने भी साथ बात की। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के नबी की महफिल है, रबीउल अव्वल का प्रोग्राम है, इस खाने में मेरा हिस्सा भी होगा। कैटरिंग करने वाले हमारे कासिम भाई जो मुस्तफा कैटरिंग वाले, उन्होंने कहा इसमें मेरा हिस्सा भी होगा। मैंने कहा चले चिकन की बिरयानी कर लेते हैं या चिकन का पुलाव कर लेते हैं, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं व्हील की होगी, एक एक में पांच पांच चार चार छह छह बोटियां होंगी, ये अल्लाह के नबी की महफिल हो रही है। तो जो इसमें वो औरतें वो बहनें जिनको मैं और आप ये समझते हैं वो आम लोग हैं, वो बहुत ऊंचे लोग हैं, वो बहुत आला लोग हैं, बहुत अफजल लोग हैं, मैं और आप क्या जाने कि वो कैटरिंग करने वाला जन्नत ले जाए, और मैं और आप जो दावा करते हैं कि हमने कुरान के कोर्सेज किए हुए हैं, हम तो खतीब हैं, हम तो आलिम हैं, हमने मसाजिद को आबाद किया, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं जड़े काटने की वजह से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बुगत और कीने की वजह से हम पीछे रह जाएं, और आम पब्लिक जो अमल के मैदान में बहुत आगे है। फिर उसके बाद बात हुई कि हदीस प्रिंटिंग करनी है, कि लोग जो आएंगे सब लोग नोट्स नहीं लेते तो उनको जाते जाते कुछ तोहफा दिया जाए, तोहफा बहुत महंगा भी ना हो। पहले हमने सोचा फजकरूनी देते हैं, हमने कहा वो महंगी बहुत है, अगर कोई दे दे यानी हिस्सा डाले तो बहुत अच्छा है कि लोगों के पास घर घर चली जाए। फिर कहा कि अच्छा जरा कम कीमत पे होना चाहिए, उसके लिए हदीस ढूंढी, अब इसकी उर्दू चाहिए ताकि उर्दू वाले पढ़ सके। हमने कहा इंग्लिश में भी इंग्लिश वाले भी रहते हैं, अच्छा इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश वालों ने उसी वक्त जो है हमारी बहन ने इंग्लिश करके भेज दी। उसके बाद इसके डिजाइनिंग की बात थी कि अच्छा भी लगे, प्यारा भी लगे, अच्छी तरह पेश करे। तो अब ये कि डिजाइनिंग की बात थी, वो भी बरतानिया में बैठे हुए हमारे बेटे ने जो हमारी टीम में है उसने इसको डिजाइन कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रिंटिंग की बात हुई, और इसके मराहल से गुजरते गुजरते जुमे का दिन आ गया, ये परसों का दिन। तो प्रिंटिंग के लिए जब कॉल किया तो मैंने उनसे जब ऑर्डर दिया तो मैंने पूछा कि इसके पैसे कितने होंगे। मैंने कहा इस तरह से वो हम उनसे प्रिंटिंग कराते हैं, वो हमें जानते हैं। उन्होंने कहा ये सीरत का प्रोग्राम हो रहा है, ये मेरी तरफ से तोहफा होगा, मैं इसका कोई पैसा नहीं लूंगा। और मैं सच्ची बात है मैं रोने लगी। मैंने कहा अल्लाह ताला आप इतनी मोहब्बत करते हैं, आप इतना प्यार करते हैं, ये उन लोगों ने सीरत कॉन्फ्रेंस को रखा है और कामयाब किया है जो दुनिया आम लोग जिनको हम समझते हैं, कुरान वाले कहां चले गए, सीरत के लेक्चर देने वाले कहां चले गए, कुरान की बातें करने वाले कहां चले गए। तो मेरी प्यारी बहनों ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। कभी ये ना सोचें कि मैं बहुत अच्छी हूं, आप बुर्का पहनती हैं, आप पर्दा करती हैं, किसी भाई की दाढ़ी लंबी लंबी है, पांव टखनों से ऊपर शलवार वो रखते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, कभी एक दूसरे को हकीर ना समझें। साथ जो नमाज पढ़ रहा है कभी उसके बारे में यह ना सोचे, इसको तो हाथ भी सही तरह रखनी नहीं आते, इसको तो सजदा करना नहीं आता। बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ दूसरे शख्स से, दूसरी बहन से, दूसरे भाई से आप बात करें, क्या पता कि उसका मकाम कितना ऊंचा है, क्या पता कि वो अल्लाह के यहाँ पहुंचा हुआ है। उसका कौन सा अमल है जो मुझे और आपको नहीं पता। किसी को जाहिर को देखकर कोई फैसला ना करे। तो ये सीरत कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं की, ये अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए करवाई है, ये अल्लाह का फैसला था। वाकई आज का दिन एक तारीख साज दिन है। चश्मे फलक ने ये नजारे देखे कि आपके लिए गिफ्ट बनाने वाले रात भर जागते रहे। मैंने कहा कि तबीयत कुछ ऐसी, सर में 2-3 दिन से बहुत ही दर्द था और मैं कह रही थी, मैं कही कि साल अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर की गोली खाने की तौफीक नहीं, मतलब मुझे जरूरत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। हत्ता कि बेटे की डेथ भी हुई, मैंने एक गोली भी नहीं खाई, मेरी तबीयत ठीक थी। इतना बड़ा हादसा था कि 25.5 साल का नौजवान मौके पर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अल्लाह का एहसान है। लेकिन इन दिनों मैंने जो है वो सर की दर्द की गोली भी खाई, और मैं अपने मतलब मैं चाहती थी कि आपको सामने कुछ चीज नजर आए, तो मैंने कहा कि बस अब नहीं मैं लिख सकी, क्योंकि मैं ज्यादा जबानी बोलना मुझे इजी लगता है कि मैं बस अपने जहन में तरतीब देती हूँ या थोड़े बहुत पॉइंट लिख के तो मैं बोलती जाऊं। तो रात को टाइपिंग टीम में हमारी बहन है, उसका रात को फोन आया कि आप रात को भी भेज देंगी ना, मैं तहज्जुद में उठकर जो है ना इसको टाइप कर दूंगी। और मैं भी फिर जागी रात को, मैंने चाय कॉफी पी, मैंने 4:15 उसको फाइल भेजी और उसने जो है 6:30 तक इसको टाइप किया। तो ये इश्क का सफर है, ये मोहब्बतों का सफर है, ये सेक्रीफाइस का सफर है। तो ये सीरत कॉन्फ्रेंस जो है ये हम में से बहुत से लोगों के बारे में ये फैसला कर सकती है कि हम सच्ची मोहब्बत के दर्जात पर कहाँ खड़े हैं। तो प्रोडक्टिव लव बहुत जरूरी है। तो पहला दर्जा नॉलेज का, दूसरा अंडरस्टैंडिंग का, तीसरा आइडियलाइजेशन का, और चौथा सेक्रीफाइस करने का। तो अब मुझे और आपको देखना है कि मैं और आप कितना सेक्रीफाइस करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर इसके बाद जो है इस रास्ते की कुछ रकावटें भी हैं, जो 8 रकावटें हैं, जिसमें जो है वो वालदैन आते हैं, औलाद आती है, भाई आते हैं, शोहर और बीवियां आती हैं, खानदान वाले आते हैं, माल आता है, तिजारत आती है, और घर आते हैं जिनसे इंसान अल्लाह इंसान बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में तुम्हारी रकावट बनती हैं, तो फिर इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फिर फैसला ले आए। यानी तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करनी है, और ये तुम्हारे पांव की जंजीर नहीं बननी चाहिए, इनको तोड़ कर फेंक दो। हर वो चीज, वो दोस्ती हो या वो दौलत हो, औलाद हो या वो रिश्तेदारी हो, या कोई भी चीज जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रास्ते में अमल करने में रकावट बने, उसको तोड़कर, उस जंजीर को तोड़कर अलग कर देना चाहिए। इसका मतलब है वो मेरा रिश्ता, मेरा वो ताल्लुक सच्चा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत से वो रोकता है। फिर इसके बाद ये है कि इत्तबाए रसूल और आज का मुसलमान। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जिनके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ऐलान कर दिया के वरफाना लका जिक्र, कि मैंने तेरा जिक्र जो है बुलंद कर दिया, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आवाजा दुनिया भर में जो है उसकी शोहरत हमें सुनाई देती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की शोहरत क्यों ना सुनाई दे, कोहे सफा से लेकर वो ताइफ का मैदान, वो उकास का मेला, वो मक्का की गलियां, आप दावत देते रहे और लोग आपकी दावत को झुठलाते रहे, आप इंसानियत को तहजीब के फंदों से आजाद करते रहे और वो आपके गले में रस्सियां और ओजड़ी डालते रहे, आप उन पर खुशबू और मुश्क और अंबर छिड़कते रहे और वो आप पर गंदगी जो थे वो डालते रहे, वो आपके रास्ते में कांटे बिछाते रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो क्या करते रहे कि जिस पर बोझ डाले गए वो इंसानियत के कंधों से बातिल के बोझ को जो थे वो उतारते रहे, जिसकी गर्दन घोंटी गई वो तहजीब की गर्दन जो थी उसको रस्मों के फंदों से आजाद करते रहे। तो आपकी पूरी जिंदगी जिद्दोजहद की जिंदगी नजर आती है, यहां तक कि आपने फिर ताइफ का सफर किया। और ताइफ का सफर आपकी जिंदगी का सबसे सख्त सफर था। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने एक दफा पूछा कि आपकी जिंदगी में ओहद से सख्त भी कोई दिन गुजरा, ये बुखारी की रवायत है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी कौम ने जो तकलीफें दी सो दी, लेकिन ताइफ का दिन सबसे सख्त दिन था। जब तीन सरदारों ने अब्दे लैल, मसूद और हबीब, उन्होंने आपको झुटलाया, इनकार किया। जब उन्होंने नौजवान लड़कों को, बाश लड़कों को आपके पीछे लगाया, जो आपके टखनों पर ताक ताक कर पत्थर मारते थे और आप लहू लहान हो गए, और उन्होंने उस वक्त तक आपको धक्के दिए और बाहर निकाला जब तक कि आप ताइफ से बाहर नहीं आ गए। और आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? आप 50 साल के हो चुके थे। मक्का से ताइफ का सफर पैदल किया, गर्मी का मौसम था, हजरत जैद आपके साथ थे, आप रो रहे थे, आपके आंसू बह रहे थे, अल्लाह को भी आप पर प्यार आया और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अजाब देने वाला फरिश्ता आया। और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप देखें कि आपने तब भी बद्दुआ नहीं दी और दुआ दी ना। तो ये है मेरे और आपके रसूल का उसवा। तो क्या हम भूल गए ताइफ के मैदान को? क्या हम भूल गए मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के सफर को? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने मेरे और आपके लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। अब सवाल ये पैदा होता है कि रबीउल अव्वल के महीने में उम्मत मुस्लिमा क्या करती है? रोशनियों का इंतजाम करती है, गलियां बाजार रोशन करती है, और इसके अलावा हम मिठाइयां तकसीम करते हैं, फूल खुशबू वगैरह हम ये सब कुछ करते हैं। सवाल ये है, हमने गलियां सजा ली, हमने चरागाह कर लिए, हमने देगें पका ली, हमने भंगड़े डालिए, क्या दिल की नगरी के अंदर जो अंधेरे हैं उसका भी रोशनी का कोई इंतजाम किया? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर बहुत अंधेरे हैं। तो इन्हें रिसालत के खाके हैं। तो योम विलादत की खुशी में अगर जन्नत मिलती ना तो अबू लहब को मिलती, अगर हसब और नसब की वजह से मिलती ना तो अबू लहब को मिलती, दौलत की वजह से मिलती तो अबू लहब को मिलती, और हुसन की वजह से मिलती तो अबू लहब को मिलती। लेकिन कुरान में आता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसका अंजाम जहन्नुम है। हालांकि प्यारे रसूल की पैदाइश पर उसने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया था, कहा तुमने मुझे बड़ी अच्छी खबर दी है कि मेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, आज मेरे पास गली में वो बैठा था मक्का के बाजार में, कोई चीज होती तो मैं तुम्हें देता, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। लेकिन योम विलादत मनाने पर जन्नत नहीं मिलती, अगर मिलती है तो ये अमलों से मिलती है। बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हो, वो काली रंगत वाले, वो मोटे मोटे होंठों वाले, ना जिनकी जायदाद थी और ना जिनकी कोई मलकियत थी, और गुलाम थे, कोई बहुत ऊंची जात भी नहीं थी। प्यारे रसूल ने फरमाया, मैंने जन्नत में अपने कदमों के आगे बिलाल हबशी की आवाज सुनी है। तो ये मेरी बहन, ये वो नगरी है, अल्लाह का दरबार वो दरबार है जहां चौधराहट नहीं देखी जाती, जहां हसब नसब नहीं पूछा जाता, जहां दौलत नहीं देखी जाती, जहां दिल देखे जाते हैं और जहां पे अमल देखे जाते हैं। तो आइए अमल के मैदान में आगे बढ़े। दिल जाता है, दिल से तेरी उल्फत नहीं जाती, सर जाता है, सर से तेरा सौदा नहीं जाता। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अंदाज क्या था कि शहर तो शहर बदल जाएंगे वीराने तक, शब की बजाय शमाए दिल को जला के तो देख। तो रसूल अल्लाह के सहाबा जो थे वो कैसे थे? उसने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है, क्या रिहाई है कि हजरत जैद जो थे बाप लेने आए हैं लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह उनके बारे में प्यारे रसूल ने फरमाया, मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया लेकिन सवाए अबू बकर के। सबके दरवाजे मस्जिद नबी की तरफ जो खुलते हैं, खिड़कियां खुलती हैं, बंद कर दिए जाए सवाए अबू बकर के। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो जो थे, जिन्होंने दिल जान प्यारे रसूल के लिए कुर्बान किया था, अपने दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी मोहब्बत रखी थी, पता है उस जमाने में कितनी कीमत लगी थी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो के सर की? 100 ऊंट। अहले मक्का ने ऐलान किया था कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो को प्यारे रसूल के लिए भी 100 ऊंट थे, लेकिन चलो वो तो अल्लाह के रसूल थे, लेकिन सिद्दीक जो के आशिक थे, सच्चे आशिक, जिन्होंने जान माल घर कुवत वक्त दौलत सलाहियतें सब चीजें जो थी अल्लाह के मिशन के रास्ते में कुर्बान की, मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत सीखनी है सिद्दीक से सीखें कि प्यारे उनके सर की कीमत 100 ऊंट लगी। और जब हिजरत का सफर था तो पहले से ही सवारी का इंतजाम किया हुआ था, और रो रहे थे जब प्यारे रसूल ने कहा कि हिजरत के सफर में मैंने अबू बकर का इंतखाब किया। उमर रदी अल्लाह से कहा तुम भी चले जाओ, हजरत अली से कहा तुम बाद में आना, और सिद्दीक से कहा तुम मेरे साथ चलोगे। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु रोने लगे। हजरत आयशा ने देखा तो परेशान हुई कि क्या रूमियों ने हमला कर दिया, क्या कुछ मसला हो गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्यारे रसूल ने कहा है कि तुम हिजरत के सफर में जो है वो मेरे साथ जाओगे। और हजरत आयशा कहती हैं उस दिन पहले दिन मुझे पता चला कि कोई खुशी से भी रोता है, और हम में से कोई होता या बाकी लोग, हम कहते हैं कि नहीं, अगर आप पर्दा करते हैं ना हम आपका साथ नहीं दे सकते, अगर आप कुरान की बात करते हैं ना हम आपको अपनी शादी में नहीं बुला सकते, हम आपसे रिश्तेदारी नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर लगता है। तो देखें ये साथ देने का सफर है, सिद्दीक और सिद्दीका बनने का सफर है। तो हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, और कहते हैं कि हिजरत के सफर में वो क्या कर रहे थे कि खुद पीछे पीछे जाते थे, प्यारे रसूल आगे, जहां कहीं खतरा देखते थे ना खुद ऐसे हो जाते थे। और गार में जब गए ना तो ऊपर चढ़ते चढ़ते, कोई चढ़ा है ऊपर गारे सौर में, कोई चढ़ा है ऊपर? कभी जाए ना हज और उमरा करने तो जरूर आप चढ़े, पीछे से हाथ खड़ा है। तो चढ़ते चढ़ते प्यारे रसूल के पांव से ना जख्म हो गए और खून बहने लगा, रिसने लगा। हजरत अबूबकर सिद्दीक के पांव भी जख्मी थे, लेकिन हजरत अबूबकर सिद्दीक ने प्यारे रसूल को गोद में उठाया, तेजी से भाग कर ऊपर चढ़े, खतरा था पीछे से वो ना आ जाए। तो ऊपर की चढ़ाई उस जमाने का तस्वर करें, और वो भाग कर चढ़े, और उसके बाद कहा प्यारे रसूल आप इधर खड़े हो, मैं जरा गार को पहले जाके चेक कर लूं। अंदर जाके सफाई की, अपना जो कपड़ा वगैरह था उससे फाड़ कर सुराख में चीजें अंदर लगाई, और उसके बाद फिर प्यारे रसूल बहुत थके हुए थे, दो जहान का बादशाह अपनी गोद में, उनके अपनी गोद में सर रखा तो सो गए। जब वो सोए सो रहे थे तो उनके चेहरे पर प्यारे अबू बकर की आंखों से आंसू टपक कर गिरे, आंख खुल गई। कहा अबू बकर क्या हुआ? कहा कि किसी चीज ने काट लिया है, क्योंकि एक आध सुराख ऐसा था जहां पे कपड़ा खत्म हो गया था, वहां पांव की एड़ी दी हुई थी अबू बकर सिद्दीक ने, तो जब उस कीड़े ने, उस सांप ने, किसी चीज ने काटा तो शिद्दत से, दर्द की शिद्दत से आंसू बहने लगे। मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। और इतनी दौलत खर्च की कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर की नेकियों का बदला मैं दुनिया में नहीं दे सका। अच्छा, फिर यानी एक ही बात नहीं है, बेशुमार सहाबा की कहानियां हैं, और इतनी खूबसूरत कहानियां हैं कि दिल चाहता है कि मैं कहती रहूं और आप सुनती रहें, मैं सर ढूंढती रहूं आप आंसू बहाती रहें, और मैं आंसू बहाती रहूं और आप सर ढूंढती रहें। लेकिन आइए अपने दिलों में ईमान की शमा जलाएं। और आज के दौर का एक वाकया इमाम अबू दाऊद का, वाकयात बहुत से हैं जो मैंने सोचे थे, लेकिन अब जबकि टाइम हमारा ख़त्म होने को है तो बात को समेटते हैं। और अबू दाऊद का एक वाकया जिनके बारे में आता है कि 3 दिरहम में जन्नत खरीद ली, सिहा सित्ता में इनकी किताब हदीस की शामिल होती है। दरिया के किनारे खड़े थे, और अंदर दरिया के अंदर एक जहाज था या एक कश्ती वगैरह थी जो भी, उसमें से ना दरिया के किनारे इनको आवाज आई, किसी ने छींक मारी है, और जिसने छींक मारी थी उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब इन्होंने सोचा मैं जवाब देता हूं। अब जवाब देने के लिए कश्ती ली, कश्ती किनारे पे लगी, उसको 3 दिरहम उस जमाने में दिए, और जाके उसको कहा यरहमकुल्लाह। कहते हैं उस वक्त वहां पे लोगों ने सुना कि गैब से आवाज आई कि अबू दाऊद तुमने 3 दिरहम में जन्नत खरीद ली। तो मेरी प्यारी बहनों, ये वो दरबार है जहां पे अमल की जरूरत है। मैं हूं या आप, आइए अपने अमलों से अपनी जिंदगियों को आरास्ता करें। और दियारे यार का सारा सफर अनोखा था, कदम पे नया दे के इम्तहां गुजरे, ए दिल संभल के किसी को इम्तहां देना है कि जिंदगानी के लम्हे कहां कहां गुजरे। और मैं अपनी बात को इन अशार के साथ खत्म करती हूं, और ये सवाल मेरा आपसे भी है और अपने आप से भी है कि सीरत कॉन्फ्रेंस में आने के बाद अब मेरा और आपका अमल क्या होगा, मैंने और आपने अमल के उसूल क्या लिए हैं। तो जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, ये बहुत खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असलूका हुब्बक व हुब्बा मैं हुब्बक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, तो ये फस्करूनी में भी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ और इसमें क्या चीज़ें हैं, जो भी हदीस गिफ्ट आपको मिला है, जो मेरे पास भी है, कि इसमें जो 3 चीज़ें हैं इस पे मुझे और आपको अमल करना है, और क्या है कि दुरूद शरीफ की मुझे और आपको कसरत करनी है, और मेरे और आपके लिए अमल का असूल क्या है, आखिरी चीज कि मुझे और आपको अपने आप को बदलना है। जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढती हूँ मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढती हूँ मैं, मुझे नमक की कान में मिठास की तलाश है, बरहंगी के शहर में लिबास की तलाश है, मैं सागरों को क्या करूं कि प्यास की तलाश है, बहुत दिनों में रास्ता सीरत कॉन्फ्रेंस का मिला, बहुत दिनों में रास्ता सीरत कॉन्फ्रेंस का मिला, बहुत दिनों में रास्ता हरीम नास का मिला, बताओ क्या सनम मिले, बताओ क्या खुदा मिला, मेरे सफर की साथियों तुम ही से पूछती हूँ मैं, बताओ क्या खुदा मिला, बताओ क्या सनम मिले, जवाब चाहिए मुझे, जवाब ढूंढती हूँ मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढती हूँ मैं, कि जो सहाबा को खड़ा कर देती थी, जो उनको जगा देती थी और वो भागते दौड़ते थे और उन्होंने ईमान को जिंदा करने की जिंदा मिसालें कायम कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اے رحیم اے کریم اے اللہ ये तेरा शुक्र है, ये तेरा एहसान है कि तूने हम जैसे गुनाहगारों को आज हम सबको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। ये तेरा करम है, ये सब तेरा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। जिंदगी में बड़ी गलतियाँ हुई, बड़ी कोताहियाँ हुई, बड़े गुनाह हुए, आप हमें माफ़ कर दीजिए। वो गुनाह जो हमने छुप छुप कर किए और वो जो हमने सबके सामने किए, वो जो छोटे छोटे हैं और वो जो बहुत बड़े हैं, आप तो अकरमुल अकरमीन हैं, आप तो अरहमुर राहिमीन हैं, अब हम सब पर रहम कीजिए। और इस सीरत कॉन्फ्रेंस के रखने में, इसके इनकाद में, इसके हॉल को बुक करवाने में जिन जिन के जज्बात और एहसास शामिल हैं, जिनकी आवाज़ें शामिल हैं, जिनकी आवाज़ें मेरे कानों में रस घोलती रहीं, जिनकी आवाज़ें और जिनके कॉल जो थी वो इसरार करती रहीं कि हाँ प्रोग्राम रखना चाहिए, सीरत कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और जिसने खाने का इंतज़ाम किया, और जिन लोगों ने, बहनों ने कुर्सियाँ लगाने में मदद की, जिन्होंने हॉल बुक करवाने में, और जिन्होंने कार्ड का डिज़ाइन बनाया, जिन्होंने टाइपिंग की, जिन्होंने प्रिंटिंग की, और जिन्होंने रात भर बैठकर गिफ्ट पैक किए, और जो पानी की बोतलें लेकर आए, और जिसने एक एक हिस्सा डाला, दुनिया नहीं जानती लेकिन ऐ मेरे रब आप तो जानते हैं। आप इन सब की कोशिशों को कबूल कर लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते जाते थे और कहते जाते थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला, आपको पता है ना, मैंने भी सीरत कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम की तैयारी बहुत मोहब्बतों से की थी, बहुत अच्छे से की थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं इसका हक अदा नहीं कर सकी, मैं इसको उस तरह नहीं कर सकी जैसे इसको करना चाहिए था। कोई एक बात, कोई एक आयत, कोई एक हदीस, कोई एक वाक्या, कोई एक चीज जो हम सब के लिए मिशल राह बन जाए, तू हमारे दिलों को बदल दे, तू हमारे अमलों को बदल दे, तू हमें मुसलमान बना दे, तू हमारे दुखों को खत्म कर दे, तुम्हारी मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर, अंधे कुएं से निकाल कर मिस्र के तख्त पर पहुंचाने वाले रब, तू हमारे यूसुफों को भी हिफाजत कर, उनकी जवानियां जो लुट रही हैं उनको लुटने से बचा ले। और प्यारे रसूल ने हजरत अबू बकर से कहा था, ला तहजन इनल्लाह माना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तेरी तौहीद और आखरत का पैगाम देने के लिए दारुल उलूम क्लासेस कर रहा है, ये हमारे बच्चे जो हमारी आंखों की ठंडक बनने चाहिए, हमारे आंखों के आंसू बने हुए हैं। तो अल्लाह, ये जो माएं हैं, ये जो बहनें हैं, ये जो बेटियां हैं, ये जो बच्चे हैं, ये तेरी मोहब्बत में आए हैं, तो इनकी सबके कोशिशें कबूल कर ले, इन सबके आंखों में जो आंसू हैं इनको खुशियों से बदल दे, इनके बच्चों और बच्चियों के नेक और अच्छी जगह रिश्ते कर दे। ऐ 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले अल्लाह, तू हमारे बच्चों को नेक और अच्छे मुत्तकी रिश्ते दे दे। रब्बे इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, हम फकीर हैं, हम मोहताज हैं, आप तो दाता है ना, हम तो सवाली हैं, अपने हाथों को उठाया है, अपने दामन को फैलाया है, आप तो गनी हैं, आप हम सबको माफ कर दीजिए, हमारे बच्चों के अच्छे रिश्ते कर दीजिए, और हमारे घरों में जो बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लड़ाइयां झगड़े हैं, तो इनकी मुश्किलों को काट दे, तो इनका वारिस बन जा, तो हम में और हमारे शोहरों में मोहब्बत दे, हमें प्यार दे दे। और माएं रोती हैं और माँ बाप जो है परेशान हैं। अल्लाह ताला हम यहाँ पे आए, आप हमारा आना हमारे लिए हुज्जत बना दीजिए, हमारी नस्लों में नेकी लिख दीजिए, हमारे बच्चों को ड्रग्स की बुरी सोहबत से निकाल दीजिए, चोरी की सोहबत से निकाल दीजिए, और बुरी सोहबत जो दोस्तों की है उससे हटा दीजिए। तो हमसे वो काम ले ले जो तुझे राजी कर ले, और हमारे पेशानी के जो माथे के बाल हैं इनसे पकड़ कर सिराते मुस्तकीम पे चला। कुछ बीमार हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे दुआओं की दरख्वास्त की है, तो उनको जो है वो दुरुस्त कर दे। वो जो हॉस्पिटल में है जिनका ऑपरेशन हुआ है और जिनका होने वाला है, वो जो घरों में हैं, जो छोटे हैं या बड़े हैं, इस महफिल में हैं, किसी को भी कोई भी तकलीफ और बीमारी है, तो ऐ अल्लाह तू उनको शिफा दे दे। अल्लाहुम्म रब्बन नासी वश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ वला युगादिरु सकमा। और यहाँ पे जिन्होंने डेकोरेशन की है, ये भी उन्होंने सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए जो है सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए की है, और बिना पैसों के किया। जिन्होंने माइक सिस्टम ला के रखा है मिसी सागा से, वो चला या नहीं चला, वो कल तेरी मोहब्बत ने ये माइक यहाँ पे मियाँ बीवी जो लेकर आए, तो उनकी उनको गाड़ी के पहियों समेत जन्नत में ले जा। और वो जो औरतें यहाँ पे खुद आई और दूसरों को राइड दी, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, मिल्टन और मुख्तलिफ जगहों से जो आए यहाँ पे और लोगों को लेकर आए, इनको इनकी गाड़ी पहियों समेत, इनके घर वाले, इनके बच्चे, इनकी नस्लें सब समेत इनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में इकट्ठा कर दें। अनअमता अलैहिम। और जो हमारे वालदैन और बहन भाई और औलाद या प्यारों में से दुनिया से चला गया, तो उनकी मगफिरत कर दे। लेकिन जब कल तू पूछे हशर के मैदान में कि जब रसूल का मजाक उड़ाया था, उड़ाया जाता था, तुम कहाँ मर गई थी? जब तू पूछे कि मेरे रसूल की सुन्नतें पामाल हो रही थी, तुम कहाँ रह गए थे? तो हम कह सकेंगे कि हमने भी स्टेज तो सजाया था, हमने भी कुर्सियां तो लगाई थी, हमने भी फ्लायर तो बनाए थे, और हमने भी तेरे दीन की तरफ बुलाया था। दिलों में असर तो आपने पैदा करना है, आप इन सब के दिलों में असर पैदा कर दीजिए और इन कोशिशों को कबूल कर लीजिए, और हमें जो है अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बना दीजिए। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम।